प्रभु परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है।
स्थापित है स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन, सृष्टि निर्माता भी है यही वचन। प्यासी आत्मा की भी तृप्ति है यही वचन। स्वर्गीय जीवन रोटी, आंखों की ये ज्योति, ये सत्य वचन, ये जीवित वचन, सबसे उत्तम ज्ञान यही है। आओ सुने सत्य वचन।
कार्यक्रम सत्य वचन सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्रेम भरा नमस्कार। परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना कितना लाभप्रद है, ये हमारे जीवन के लिए सही दिशा निर्देश प्रदान करता है। इसके साथ आत्मिक विकास व उन्नति के लिए भी अनिवार्य है। तो आइए आज के बाइबल अध्ययन में हम भाग लें, किंतु इससे पूर्व की आज का ये अध्ययन आरम्भ करें, मन की तैयारी के लिए सुनिए एक मधुर गीत।
आइए श्रोता, इसी सुंदर गीत के साथ ही हम आज के बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। इससे पूर्व के कार्यक्रम को आरंभ करें अपने मनों की तैयारी के लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। यति दयालु और प्रेमी पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपनी अनुकंपा से ये सुंदर समय हमको दिया है कि हम आपके पवित्र वचन का अध्ययन कर सकें। हमारी प्रार्थना है प्रभु कि इस वचन को समझने के लिए हमें बुद्धि प्रदान करने की कृपा करें। हमारे मध्य में कोई श्रोता भाई बहन किसी रोग से पीड़ित है, समस्या में है, उलझन में है, घोर पाप में फंसा हुआ है, प्रभु आप उनका छुटकारा करें। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर लें, क्योंकि हम ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। हाँ तो मित्र, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों हम अपने सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के अंतर्गत पुराने नियम से राजाओं की पहली पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम इसके 17वें और 18वें अध्यायों को देखेंगे। 17वें अध्याय का विषय होगा एलिया के कहे अनुसार 3 वर्ष सूखा पड़ना। अब इस अध्याय में हमको एलिया नबी से परिचित कराया गया है। हमने पिछले कार्यक्रम में अध्ययन किया है कि ओम्री के शासन काल में इसराइल राज्य भी 2 भागों में बंट गया। अभी तक तो संपूर्ण इसराइल, यहूदा और इसराइल अलग हुए। अब इसराइल राज्य भी, जिसमें 10 गोत्र सम्मिलित थे, वह भी 2 भागों में बंट गया। इसराइल के आधे लोग गीनत के पुत्र तिबनी के पक्ष में हो गए और आधे ओम्री के पक्ष में। ओम्री के पश्चात उसका पुत्र अहाब इसराइल का राजा बना और इसके विषय में बताया गया है कि इसने अब तक के सभी राजाओं से अधिक दुष्टता की। यारोबाम जैसे अपराधों को करते रहना इसने हल्की बात समझी और इसने बाल देवता के पुजारी की पुत्री इसाबेल से विवाह कर लिया। और आगे इसके विषय में लिखा है कि अहाब ने बाल देवता का भवन बनवाकर उसकी वेदी खड़ी करवाई, एक अशेरा भी बनाई और उसने स्वयं प्रतिमा पूजा की और प्रजा से भी करवाई और इस प्रकार परमेश्वर का कोप भड़काया। अहाब के शासन काल ही में यहोशू द्वारा शापित नगर यरीहो को पुनः बसाया गया और इस प्रकार ऐसे बुरे समय में परमेश्वर का एक नबी सामने आया। आज हम इसी नबी के विषय में अध्ययन करेंगे। इस नबी का नाम है एलिया नबी। ये पवित्र बाइबल के वरिष्ठ नबियों में से हैं। ये उनमें से हैं जो अपने प्राणों की चिंता किए बिना परमेश्वर के वचन को स्पष्टता व निर्भीकता के साथ पहुंचाते थे। इनका पूरा नाम एलिया तिशबी था। एलिया ने परमेश्वर से प्रार्थना की और 3 वर्ष मेहना बरसा, फलस्वरूप भीषण अकाल पड़ गया। अब आइए आज एलिया के द्वारा किए गए कार्यों के विषय में हम अध्ययन करेंगे। तो हमारे साथ देखें पहला राजा, उसका 17वां अध्याय। पहला राजा 17वां अध्याय 1 से 7 पदों में इस प्रकार से लिखा हुआ है। तब तिशबी एलिया ने, जो गिलात के प्रदेशियों में से था, अहाब से कहा, इसराइल के परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, निसंदेह इन वर्षों में मेरे कहे बिना ना तो मेह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। मेरे मित्र, ये पद बताता है कि एलिया ने अहाब राजा को चुनौती दे दी कि मेरे कहे बिना पृथ्वी पर मेह नहीं बरसेगा। एलिया से हमारा परिचय बड़े नाटकीय ढंग से होता है। वह अहाब और इजाबेल को उनके दरबार में जाकर चुनौती देता है और ये घोषणा करता है कि मेरे कहे बिना ना तो मेह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। ये वास्तव में बड़े साहस का कार्य था, इजाबेल को उत्तेजित करने वाला कार्य था और इसमें उसके प्राण का खतरा था। सो आगे लिखा है, तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, यहां से चला जा और पूर्व की ओर मुड़कर करीत नाले में, जो यर्दन के पूर्व में है, छिप जा। और ऐसा होगा कि तू उसी नाले का पानी पिएगा और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वे वहां तेरे लिए भोजन पहुंचाएं। अतः उसने जाकर यहोवा के वचन के अनुसार किया और वह यर्दन के पूर्व करीत नाम नाले के पास जाकर रहने लगा और कौए सुबह और शाम उसके लिए रोटी और मांस लाया करते थे और वह नाले का पानी पिया करता था। और ऐसा हुआ कि उस देश में वर्षा ना होने के कारण कुछ दिनों में वह नाला भी सूख गया। मित्रवर, इससे पूर्व की परमेश्वर एलिया को कार्य के लिए भेजे, वो उसको प्रशिक्षण दे रहे हैं और अब वो यहां से निकालकर उसको कुछ महत्वपूर्ण बातें सिखाने के लिए बाहर ले जाते हैं और परमेश्वर पिता उसे करीत नाले और सारपत नगर ले जाते हैं। स्वाइये आगे देखें, तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, उठ सीदोन के सारपत को जा और वहीं रहे, देख मैंने वहां एक विधवा को तेरे लिए भोजन का प्रबंध करने की आज्ञा दी है। इसलिए उठकर सारपत को जा। और जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो एक विधवा लकड़ियां बीन रही थी और उसने उसे बुलाकर कहा, मेरे पीने के लिए किसी पात्र में थोड़ा सा पानी ले आ। अब यहां पर बताया गया है कि परमेश्वर ने एलिया को सारपत नगर भेज दिया और वहाँ जाते ही उसकी भेंट एक विधवा से होती है और वह उससे पानी मांगता है। तब आगे हम पढ़ते हैं, और जब वह लेने जा रही थी, अर्थात वह विधवा जब पानी लेने जा रही थी, तो उसने उसे पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे लिए लेती आना। परंतु उसने कहा, अर्थात विधवा ने उससे कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, घड़े में केवल मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और देख मैं कुछ लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि मैं जाऊँ और अपने बेटे के लिए पकाऊँ और फिर हम उसे खाएं और मर जाएं। मेरे मित्र, ये दशा थी उस समय अकाल की। उस विधवा के घर में भी कुछ नहीं था और वो मरने की प्रतीक्षा कर रही थी, अपनी भी और अपने बच्चे के लिए भी। किंतु परमेश्वर यहाँ उस विधवा के घर में कुछ महान कार्य करने जा रहे हैं। परमेश्वर अपनी महिमा को वहाँ प्रकट करने जा रहे हैं। तब 13वें पद में हम पढ़ते हैं, तब एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु उसमें से पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके पश्चात अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। अब देखिए यहाँ पर बड़ी कठिन परिस्थिति है। उस विधवा के पास थोड़ा सा आटा है और वो केवल उसके लिए और उसके पुत्र के लिए है। किंतु एलिया नबी उससे कहते हैं कि तुझको एक कार्य करना है कि पहले मेरे लिए रोटी लाना है। मेरे मित्र, अब यहाँ देखने की बात यह है कि ये विधवा एलिया नबी को प्राथमिकता देती है या अपनी समस्या को, अपनी परिस्थिति को। आइए 14वें पद में देखें, क्योंकि इसराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेहना बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का आटा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। अब यहां इस विधवा को चुनना है कि परमेश्वर के वचन पर विश्वास करे या एलिया नबी को वो रोटी बनाकर देकर मर जाए या समाप्त हो जाए। अब देखिए वो क्या करती है। 15वें पद में लिखा है, अतः उसने जाकर एलिया के वचन के अनुसार किया। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि उसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। परमेश्वर ने कहा कि जब तक यहोवा भूमि पर मेहना बरसाएगा, तब तक ना तो उस कुप्पी का तेल समाप्त होगा और ना आटा। अतः उसने जाकर एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से एलिया और उस स्त्री के घराने के लोग बहुत दिन तक खाते रहे। मित्रवर, जब इस विधवा ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, उसके वचन पर विश्वास किया, तो उस अकाल के समय में न केवल उस स्त्री ने भोजन किया, वरन एलिया नबी और उसके उस स्त्री के घराने के लोग आनंद के साथ भोजन करते रहे। उन्हें किसी प्रकार की घटी नहीं हुई। तब 16वें पद में हम पढ़ते हैं, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का आटा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। मेरे मित्र, यहाँ मुख्य बात यह है कि इस विधवा ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और परमेश्वर ने भी अपने वचन के अनुसार सब कुछ किया और इस अकाल के समय में उसने आशीष पाई। मित्र, आज मैं और आप इस संसार में भयंकर अकाल से पीड़ित हैं। ये आत्मिक अकाल है। यदि हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं तो मित्रवर, परमेश्वर हमको आशीष देगा। वो हमें जीवन का जल देने की प्रतिज्ञा करता है। वो प्रतिज्ञा करता है कि मैं तुमको जीवन की रोटी दूंगा, और ये जीवन का जल और ये रोटी परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह हैं। इसको खाकर आप अनंत काल के लिए तृप्त होते हैं। क्या आप वास्तव में आत्मिक रूप से भूखे और प्यासे हैं, अकाल पीड़ित हैं? मेरे प्रिय मित्र, आपकी समस्या का समाधान परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह हैं। तब 17वें पद में हम पढ़ते हैं, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उस स्त्री अर्थात घर की स्वामिनी का पुत्र रोगी हुआ और उसका रोग इतना गंभीर हो गया कि उसका सांस लेना बंद हो गया। अतः उसने एलिया से कहा, हे परमेश्वर के जन, मुझे तुझसे क्या काम? तू मेरे यहां इसलिए आया है कि मेरे अधर्म का स्मरण दिलाए और मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो। अब यहां पर हम देखते हैं कि इस स्त्री ने परमेश्वर की बड़ी आशीष को देखा, किंतु अब जब पुनः इसके ऊपर समस्या आई है और इसका पुत्र मर गया है, तो ये परमेश्वर के जन एलिया को दोषी ठहराती है। तब 19वें पद में लिखा है, तब एलिया ने उससे कहा, अपना बेटा मुझे दे। तब वे उसे उसकी गोद में से लेकर उस अटारी पर ले गया जहां वह रहता था और उसे अपनी खाट पर लिटा दिया। तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा के बेटे का प्राण लेकर इस पर भी विपत्ति ले आया है जिसके यहां मैं टिका हूं? अब यहां बड़ी सुंदर बात है, यहां हम एलिया और परमेश्वर के संबंधों के विषय में देखते हैं, एलिया के कैसे सुंदर संबंध थे परमेश्वर से। वो कहता है कि जिस स्थान पर मैं रुका हूं, क्या वहां विपत्ति आना संभव हो सकता है? तूने मुझे इस स्थान पर भेजा है, मैं तेरा जन हूं, तेरा नबी हूं, तो फिर यहां पर विपत्ति क्यों है? तब 21वें पद में हम पढ़ते हैं, तब वह उस बालक पर 3 बार पसर गया और उसने यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं तुझसे विनती करता हूं कि इस बालक का प्राण इसमें लौटा है। यहोवा ने एलिया की पुकार सुन ली और बालक का प्राण उसमें लौट आया और वह जीवित हो गया। मेरे मित्र, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एलिया के द्वारा सारपत की इस विधवा को 2 आशीषें दी। एक और उसने उसे शारीरिक रूप से आशीष दी, उसको पर्याप्त मात्रा में भोजन की व्यवस्था की, और दूसरी ओर उसने उसके पुत्र को जीवन दिया। और लिखा है कि तब एलिया उस बालक को अटारी पर से नीचे घर में ले आया और उसे उसकी माता को सौंप दिया और एलिया ने कहा, देख तेरा बेटा जीवित है। तब उस स्त्री ने एलिया से कहा, अब मैं जान गई हूं कि तू परमेश्वर का जन है और तेरे मुंह से निकला हुआ यहोवा का वचन सत्य है। सो इस प्रकार परमेश्वर ने इन 2 आश्चर्यकर्मों के द्वारा अपने दास की महिमा की और एलिया को उस महिला ने पहचाना कि ये परमेश्वर का जन है। हमने यहां पर देखा कि एलिया ने बालक को लिया और 3 बार उस पर पसर गया और परमेश्वर से विनती की और बालक के प्राण उसमें पुनः वापस लौट आए। ये पुनरुत्थान का महान सिद्धांत है, ये शरीर के पुनः जीवित होने की घटना है। प्रिय मित्र, मैं और आप अपने पापों में मृतक थे, परंतु जब मसीह यीशु के संपर्क में आए, उनका स्पर्श हुआ, हम जीवित हो गए। हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जीवित किए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पर विश्वास रखता है वह कभी नहीं मरेगा, क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। लाजर, जिसे मरे हुए 4 दिन हो चुके थे, उसकी कब्र पर यह शब्द प्रभु यीशु मसीह ने उसकी बहन मार्था से कहे। यूहन्ना प्रेरित ने इन्हें इस प्रकार से व्यक्त किया है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए फिर भी जिएगा, और प्रत्येक जो जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है कभी नहीं मरेगा। तो इस प्रकार 17वें अध्याय में हमने देखा कि परमेश्वर ने एलिया को नम्र और दीन किया। परमेश्वर ने एलिया को सिखाया कि वह शून्य है और सारी सामर्थ मेरी है। इन्हीं शब्दों के साथ 17वां अध्याय समाप्त होता है और हम प्रवेश करते हैं 18वें अध्याय में। 18वें अध्याय का शीर्षक है, एलिया द्वारा बाल के पुजारियों का विरोध। मित्रवर, सूखे नाले और सारपत नगर के अनुभव के पश्चात हम एलिया नबी को बाल के 450 और अशेरा के 400 पुजारियों के विरुद्ध खड़ा हुआ देखेंगे। अकाल अपनी तीव्रता पर है, हर ओर सूखा पड़ रहा है। ये बाइबल पवित्र शास्त्र का एक भव्य अर्थात शानदार अध्याय है। एलिया नबी बाल के भविष्यद्वक्ताओं को एक प्रतियोगिता के लिए चुनौती देता है। और इस चुनौतीपूर्ण प्रतियोगिता के द्वारा ये निश्चित हो जाएगा कि सच्चा और वास्तविक परमेश्वर कौन है। एक ओर बाल के 450 नबी हैं और दूसरी ओर हैं अकेले एलिया नबी, और इस प्रकार ये प्रतियोगिता बाल के 450 नबी विरुद्ध एलिया हो रही है। हम देखेंगे कि एलिया एक महान व्यक्ति है। अध्याय के आरंभ में हम देखेंगे कि एलिया नबी की प्रथम भेंट ओबेद्या नामक व्यक्ति से होती है। हमारे साथ देखें पहला राजा उसका 18वां अध्याय 1-15 पदों में। इन पदों में हम इस विषय में पढ़ सकते हैं। और अब परमेश्वर एलिया को प्रयोग करने के लिए तैयार है। अब ये व्यक्ति निर्भीकता के साथ कदम बढ़ा सकता है क्योंकि उसने सीख लिया है कि वह स्वयं कुछ नहीं है, वह शून्य है और परमेश्वर ही सब कुछ है। अब वह आहाब से भेंट करने के लिए तैयार है। पहला राजा 18 अध्याय उसके पहले और दूसरे पदों में हम पढ़ते हैं, तब ऐसा हुआ कि बहुत दिनों के बाद 3rd वर्ष में यहोवा का ये वचन एलिया के पास पहुंचा, जा अपने आप को आहाब के समक्ष उपस्थित कर और मैं भूमि पर वर्षा भेजूंगा। अतः एलिया आहाब के समक्ष उपस्थित होने के लिए गया। उस समय सामरिया का अकाल भयंकर हो गया था। आहाब ने ओबद्या को, जो उसके घराने का प्रधान था, बुलवाया, और ओबद्या तो यहोवा का बहुत भय मानता था। ओबद्या नामक इस व्यक्ति की विशेषता ये थी, यद्यपि वह आहाब के साथ कार्य करता था, उसके घर का प्रधान था, किंतु ये व्यक्ति यहोवा का भय मानता था। क्योंकि ऐसा हुआ कि जब इजाबेल ने यहोवा के नबियों को नाश किया तो ओबद्या ने 100 नबियों को लेकर 50-50 करके गुफा में छिपा रखा और भोजन जल देकर उनका पालन पोषण किया। यद्यपि ये कार्य ओबद्या के लिए बड़ा कठिन था, जोखिम भरा था। चूंकि वह यहोवा का भय मानता था, इसलिए उसने परमेश्वर के नबियों की रक्षा की और इस जोखिम को उठाने के लिए तैयार हो गया। तब आहाब ने ओबद्या से कहा, देश में जल के सब सोतों और घाटियों के पास जा, कदाचित वहां हमें इतनी घास मिले कि हम घोड़ों और खच्चरों को जीवित रख सकें और कुछ पशुओं को मरना ना पड़े। अतः उन्होंने सर्वेक्षण करने के लिए आपस में देश को बांट लिया और एक ओर स्वयं आहाब गया और दूसरी ओर ओबद्या। सो ये पद बताते हैं कि अकाल कैसी भयंकर दशा में था। राजमहल भी इससे प्रभावित हो चुका था। तब आगे हम पढ़ते हैं, जब ओबद्या मार्ग ही में था तो देखो एलिया उससे मिला। उसने उसे पहचान लिया और मुंह के बल गिरकर कहा, हे मेरे स्वामी एलिया, क्या तू ही है? ओबद्या के हृदय में एलिया के लिए बड़ा आदर और सम्मान था क्योंकि एलिया परमेश्वर का जन था और ओबद्या परमेश्वर पर विश्वास करता था, परमेश्वर का आदर करता था, उसका भय मानता था, इसलिए उसने एलिया का भी आदर किया। और जब उसने मार्ग में एलिया को देखा और उसको पहचान लिया और एलिया ने भी उसको बता दिया कि मैं एलिया हूं, और उसने उससे कहा, एलिया ने उससे कहा, हाँ मैं ही हूं, जा अपने स्वामी से कहे, देख एलिया यहाँ है। हम देखते हैं कि जबकि ओबद्या घास के मैदानों की खोज में था कि अपने पशुओं को चरा सके, उसकी भेंट एलिया से हो गई और उसने ओबद्या से कहा कि वह अपने राजा को ये बताए कि एलिया नगर में है। मित्रवर, ये कठिन कार्य था। और इसके उत्तर में ओबद्या क्या कहता है, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि तू अपने सेवक को मरवा डालने के लिए आहाब के हाथ सौंपना चाहता है? तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, कोई ऐसी जाति या राज्य नहीं है जिसमें मेरे स्वामी ने तुझे ढूंढने को ना भेजा हो। और जब उन लोगों ने कहा वह यहां नहीं है, तो उसने उस राज्य व जाति को इसकी शपथ खिलाई कि वे तुझे नहीं पा सके। और अब तू कहता है कि जा अपने स्वामी से कह, देख एलिया यहां है। और ऐसा होगा कि जब मैं तेरे पास से चला जाऊंगा तो यहोवा का आत्मा तुझे ऐसी जगह उठा ले जाएगा जिसे मैं नहीं जानता। अतः जब मैं जाकर आहाब को बताऊंगा और तू उसे ना मिलेगा, तब वह मुझे मार डालेगा। यद्यपि मैं तेरा दास अपनी युवावस्था से यहोवा का भय मानता आया हूं। अब यहां ओबद्या आहाब को ये बताते हुए क्यों डर रहा है कि एलिया यहाँ है। वो जानता है कि परमेश्वर का आत्मा एलिया को कहीं पर भी उठाकर ले जाता है। अब वो कहता है कि यदि मैंने ये बताया कि एलिया यहाँ है और तू कहीं और चला गया, परमेश्वर का आत्मा तुझे कहीं और ले गया, तो मैं राजा के सामने झूठा सिद्ध हो जाऊंगा और राजा मुझे मरवा डालेगा। तो 13वें पद में वो कहता है, क्या मेरे प्रभु को ये नहीं बताया गया कि जब ईजाबेल ने यहोवा के नबियों को घात किया तो मैंने क्या किया कि मैंने 100 नबियों को लेकर 50-50 करके गुफा में छिपा दिया और भोजन जल देकर उनका पालन पोषण किया। और अब तू कहता है, जा अपने स्वामी से कहे देख एलिया यहाँ है, तब तो वह मुझे मार डालेगा। ओबद्या कहता है कि मैं पहले ही से राजा की दृष्टि में एक गलत कार्य किए हुए हूँ। मैंने उसकी इच्छा के विरुद्ध परमेश्वर के नबियों को बचाकर रखा है और अब दूसरा पाप ये होगा कि मैं राजा को ये बताऊं कि देख एलिया यहाँ है और उसी समय में तू कहीं और चला जाए, तो मैं झूठा साबित हो जाऊंगा, तो राजा मुझे अवश्य मार डालेगा। तब 15वें पद में हम पढ़ते हैं, तो एलिया ने उससे कहा, सेनाओं के यहोवा के जीवन की शपथ जिसके सामने मैं रहता हूं, आज मैं अवश्य अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। मेरे मित्र, ये सुंदर कथन है, सेनाओं के यहोवा के जीवन की शपथ जिसके सामने मैं रहता हूं। ये एलिया का परिचय है। एलिया कहता है कि मैं सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के सामने रहने वाला व्यक्ति हूं। तब उबदिया या अहाब को एलिया का संदेश देने को तैयार हो जाता है। और वो संदेश क्या था? वो संदेश ये था कि देख एलिया यहां है। प्रिय मित्र, एक दिन पुनः यही संदेश समस्त संसार के समक्ष होगा, देखो एलिया यहां है। समय अभाव के कारण हम यहीं पर ठहर जाते हैं। अगले अध्ययन काल में हम देखेंगे कि एलिया और आहाब आपस में भेंट करते हैं, एलिया आहाब को चुनौती देता है। आज यहीं ठहरते हैं, अगले कार्यक्रम में पुनः आपसे भेंट करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दें, प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। प्रिय श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको लाभ पहुंचा होगा। हम आशा करते हैं कि परमेश्वर के वचन ने आपसे बात की है और इसके द्वारा आपको आत्मिक आशीष मिली है। यदि आज के कार्यक्रम से संबंधित आपके हृदय में कोई प्रश्न या संदेह है, तो आप हमें इस पते पर अवश्य लिखकर भेजें। इस विषय में हम आपकी पूरी पूरी सहायता करेंगे। हमारा पता है, कार्यक्रम सत्य वचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय अब समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।